ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक मंदिर हो, श्री प्रभुपाद लीलामृत। कल पिछली बार भी हमने, मैंने यहां क्लास लिया था तब भी यही टॉपिक था और आज भी उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में मैंने प्रचार आरंभ किया तो केवल आधा दर्जन लड़के मुझे सुनने के लिए आते थे। सुनने का तात्पर्य यह है कि मैं गाता था, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता था और भगवद गीता से कुछ श्लोक पढ़ता था। वे धैर्यपूर्वक मुझे सुनते थे क्योंकि मैं जानता हूं यदि कोई धैर्यपूर्वक कृष्ण के पवित्र नाम या उनकी लीलाओं को सुनता है तो शन्वताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण उसे भीतर से पवित्र कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है इसके अंदर कि कृष्ण कथा, भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम, इनकी जो चर्चा हो रही होती है, इनकी कथा हो रही होती है, इसके बारे में जब सब लोग मिलकर बैठ के चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए। प्रभुपाद जी यहां क्या मेंशन कर रहे हैं, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द लिसनर्स, सुनने वालों के लिए क्या होना चाहिए, धैर्य, डिटर्मिनेशन, धैर्य, विचलित नहीं होना है। अरे तो चलता ही रहता है, क्या है, कभी उधर कभी इधर, कभी मुंह इधर है कभी मुंह उधर है, कभी ध्यान किधर है कभी ध्यान किधर है, अच्छा प्रसाद कब मिल रहा है, कब खत्म हो रही है, जल्दी बताओ, मतलब वो सब नहीं। कृष्ण कथा के अंदर जब सुनने बैठे हैं तो आपके पास धैर्य होना चाहिए और धैर्य का रिजल्ट क्या बताया प्रभुपाद, क्या रिजल्ट बता रहे हैं यहां पर, शन्वताम स्वकथा कृष्ण, अर्थात कृष्ण उसको भीतर से पवित्र कर देते हैं। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, नाम जप करते हैं, माला करते हैं तो उसका एक लक्ष्य क्या होता है, इनिशियल इमीडिएट लक्ष्य क्या है, दो लक्ष्य हैं उसके, एक डिस्टेंट मतलब जो समय पाके आपको प्राप्त होगा, अरे इमीडिएट, इमीडिएट यह है कि मन का तारना हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, और डिस्टेंट क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो यहां पर जो है, जब कृष्ण ने आपको अंदर से पवित्र कर दिया, और कैसे किया, कि भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम, इनकी कथाओं को ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक सुनने से। अतः इन लड़कों और लड़कियों के साथ भी वास्तव में यही हुआ। मैं लड़के लड़कियां कहता हूं क्योंकि पाश्चात्य देश में इनमें कोई भेद नहीं है, इन्हें समान स्वतंत्रता मिलती है। हमारे देश में अब भी भेदभाव है। मेरा तात्पर्य है कि सियाने लड़कों और लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक आपस में मिलने जुलने नहीं दिया जाता, यद्यपि अब यह होने लगा है, लेकिन यूरोपीय देशों में ऐसा कोई बंधन नहीं है, इसलिए लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव करने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए उनमें से बहुत से हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं टॉमकिंस स्क्वेयर पार्क में कीर्तन किया करता था और ये लड़के लड़कियां मुझे घेर लेते थे और नाचने और हरे कृष्ण मंत्र गाने लगते थे। उनमें से थोड़ा आगे बढ़े, शुद्ध हुए, आगे होकर बोले, स्वामी जी कृपा कर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस पैराग्राफ में से निकल के आ रहा है कि जब भी आप अपने आप को देहात बुद्धि से ऊपर उठा के ले जाएंगे तो लड़के लड़की का भेद समाप्त हो जाता है। बिकॉज नाउ आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं, सोल के प्लेटफॉर्म पे हैं, और सोल में कोई लिंग नहीं होता, ना लड़का है ना लड़की है। परंतु हमारे समाज में, जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आज से उन्होंने जो है 40 साल पहले बात कही है या 45 साल पहले बात कही है, आज भी उतनी ही शाश्वत सत्य है कि अभी तक जो है सोल का प्लेटफॉर्म हम लोगों में नहीं आया। हम अभी भी उसी पुराने प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। ये बालक है, ये बालिका है, ये लड़का है, ये लड़की है। एक वो जो मेंटल एटीट्यूड है वो आज भी नहीं बदला। दूसरी बात यहां पे निकल के आ रही है कि स्वामी जी कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। स्वामी जी के अंदर उन लड़के लड़कियों ने क्या क्वालिटी देखी कि उनसे कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उस समय भी अमेरिका में कई सारे स्वामी घूम रहे थे। लीलामृत पढ़ेंगे तो आपको कईयों का उल्लेख मिलता है। मायावादी भी घूम रहे हैं, बहुत सारे स्वामी घूम रहे हैं, परंतु वो अमेरिकन्स जो कि गांजा, नशा, चरस, अफीम, कोकेन, एलएसडी इनके जाल में फंसे हुए थे, जो हिप्पी कहलाते थे, उनमें क्या ऐसा गुण, उन्होंने क्या ऐसा गुण देखा प्रभुपाद के अंदर, उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमें अपना शिष्य बना लीजिए। क्या चीज देखी, वट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दो चीजें उन्होंने देखी प्रभुपाद के अंदर, जिसने उन्हें सोचने के लिए कंपेल किया कि ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये दूसरों से अलग है। पहली चीज क्या थी, प्योरिटी, शुद्धता। प्रभुपाद कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। पहली चीज थी प्योरिटी और दूसरी चीज थी नो डिजायर, कोई डिमांड नहीं। दूसरे शिष्य क्या थे, मंत्र देंगे कोई चाहिए, मंत्र देंगे इतनी फीस लगेगी, मंत्र देंगे ये लगेगा, मंत्र देंगे वो लगेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। प्रभुपाद के पास किसी प्रकार की कोई भी मेटीरियल डिजायर नहीं थी। नॉट एट 0000001%, इन्फाइनेट जीरो लगा दो, उसके आगे 0.1 लगा दो, तब भी उनके पास कोई डिजायर नहीं। हां, डिजायर थी, बड़ी स्ट्रांग इच्छा थी उनके पास। क्या थी, आगे सुनिए। इसके लिए मेरी शर्त थी कि जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है उसे चार प्रकार के दुष्कर्मों से मुक्त होना जरूरी है। प्रभुपाद का डिजायर था, प्रभुपाद के अंदर इच्छा क्या थी कि अगर आप मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो मेरी इच्छा की पूर्ति करनी पड़ेगी, अगर मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करते हो तो मेरा शिष्य नहीं बन सकते हो। अरे एकदम क्या इच्छा है, व्यक्ति घबरा जाता, पता नहीं क्या मांग ले, पता नहीं क्या 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 इनकी रिक्वायरमेंट हो जाए। अब प्रभुपाद कहते हैं मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मांस भक्षण, मादक द्रव्य सेवन और द्यूत क्रीड़ा, इन चारों को आपको छोड़ना पड़ेगा, ये मेरी डिजायर है, ये शर्त है मेरा शिष्य बनने के लिए। कोई भौतिक कामना नहीं है, ये कामना उन भक्तों को, जो भक्त बनना चाहते हैं उनको प्योरीफाई करने की कामना है कि वो शुद्ध हो जाएं, उनका प्योरिफिकेशन हो जाए, वो भगवान की भक्ति के मार्ग पे सही तरीके से लग जाएं, ये कामना है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि मेरी शर्तें हैं और इस प्रकार इन शर्तों पर ये लड़के और लड़कियां मेरा शिष्य शिष्याओं के रूप में स्वीकृत हुए। पंचरात्रि विधि के अनुसार जब ये काफी आगे बढ़ जाते हैं तो मेरे गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के आदेशानुसार उनका उपनयन संस्कार किया जाता है। पंचरात्रि विधि क्या है, व्हाट इज पंचरात्रि विधि, इसको पंचरात्रि क्यों कहा जाता, नारद पंचरात्र ग्रंथ में उसके उसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ है। जब पंचरात्रि विधि की बात करते हैं तो नारद पंचरात्र की बात होती है, तो नारद पंचरात्र जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उस दैट नारद जी का नाम एसोसिएटेड है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं नारद जी की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, उसके बिना तो नहीं एसोसिएट हो सकता ना, तो क्या इन्वॉल्वमेंट है। पंचरात्रिका विधि का ज्ञान कौन दे रहा है? किसने दिया ज्ञान? नारद जी को दिया है। नारद जी ने दिया नहीं है, नारद जी को दिया है। शिवजी ज्ञान दे रहे हैं नारद जी को। सारा ज्ञान पांच रात्रि पांच रात में दिया गया है, फाइव नाइट्स, इसलिए इसको पंचरात्रिक विधि कहते हैं। पांच रातों के अंदर यह ज्ञान दिया गया है। और ये विधि जो हम मंदिर में अल्टर में सेवा करते हैं पंचरात्रिक विधि के अनुसार है। जो हम कथाएं करते हैं, जो हम भगवान के नाम का गुणगान करते हैं पंचरात्रिक विधि के अनुसार है। सारा सारा ज्ञान जो है उसके अंदर, षोडशोपचार जो हमारा पंचरात्र का विधि एक टेक्स्ट, बहुत मोटा किताब जीबीसी ने प्रिंट किया है, बहुत बढ़िया किताब है। और किसी को पंचरात्रिक विधि सीखनी है तो उसके लिए एक बुक है, तो वन शुड रीड दैट बुक। ये भगवान की सेवा जो है अल्टर में कैसे की जाती है, भगवान की सेवा करने के तरीके क्या है, पूरे के पूरे साधन क्या है, वो सारा का सारा ज्ञान जो है एक पंचरात्रि का विधि बुक है, उसके अंदर दिया हुआ है। उसमें जो है किस तरीके से आपको जो है 16 उपचारों के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, भगवान का आरती की जाती है, भगवान की सेवा की जाती है, एवरीथिंग इज मेंशन। तो शास्त्रानुसार उन्हें मल्लेच्छ या यवन परिवारों से आया हुआ नहीं माना चाहिए, क्योंकि अब उनका शुद्धिकरण हो गया है। मतलब अगर हम कहें कि नहीं नहीं नहीं, मेरे से कई बार टीचिंग में जाते हैं ना तो लोग प्रश्न कर देते हैं लेक्चर देने के, अजी आपके इस कौन में तो अंग्रेज आरती करते हैं, क्या पवित्रता है, क्या शुद्ध है आपके यहां, आप तो अंग्रेज से आरती करवा देते हो। क्योंकि अभी तक वो सोल के प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे, बॉडी के स्ट्रक्चर के रंग रूप के, देह का जो रंग है रूप है उसका जो व्यवहार है उसके ऊपर जा रहे हैं। ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद कोई अमेरिकन, कोई इंग्लैंड, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं रह गया है। अब सब के सब जो है वैष्णव कैटेगरी में है, और वैष्णव को पूर्ण अधिकार है भगवान की सेवा करने का। ये बात अभी उनकी समझ में नहीं आती। इसका उल्लेख सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद भागवतम में भी किया गया है। आप इसे जानते हैं कि रात हु नांग पुलिन पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसा दया ये ने च पापा यद अपाश्रयाश्रय शुद्ध यंती तस्मे प्रभविष्वने नमः। शुद्ध कैसे हो? अब यहां जो है बता रहे हैं कि आपको अगर शुद्ध होना है तो शुद्ध होने का प्रथम स्टेप, पहली सीढ़ी क्या है, कैसे शुद्ध होंगे आप? शुद्ध होने की जो पहली क्लास है, जो पहली सीढ़ी है, जो पहला स्टेप है, वो क्या है, कैसे आप शुद्ध होंगे? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ योर शुद्धिकरण? बहुत बढ़िया बात कही भगवान जी, यहां इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं और इतने सिंप्लीफाइड मैनर में बता रहे हैं कि किसी को उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक लाइन के अंदर सारी की सारी फिलॉसफी स्पष्ट, एकदम क्लियर। क्या कह रहे हैं? शुद्ध कैसे हो? प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाकर। एक सिंपल लाइन में बात बता दी, कुछ नहीं करना। और शरण में जाने का क्या मतलब है? व्हाट डज दैट मीन? शरण में जाने का मतलब यह है कि आप आदेश करता और मैं पालन करता, सिंपल। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो वो आपको जो है स्टेप्स बताते जाएंगे, आप करते जाएंगे, स्टेप्स बताते जाएंगे, आप करते जाएंगे, डेली प्रोग्रेस होती रहेगी, अल्टीमेट शुद्धिकरण हो जाएगा। अतः पंचरात्र की विधि के अनुसार ये सभी शुद्ध हैं। उनमें से बहुतों के पास यज्ञोपवीत भी है। तो जो उन्होंने शिष्य बनाए अमेरिका के अंदर, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त किए, ब्रह्म दीक्षित हो गए। प्रभुपाद बताते रहे कि पवित्र नाम में हर किसी को उन्नत बनाने की शक्ति है, चाहे उसका जन्म जहां भी हुआ हो। उन्होंने हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया, जो जन्म से मुसलमान होते हुए भी पवित्र नाम के जप के आचार्य स्वीकृत हुए थे। प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत की गत्यात्मकता का भी वर्णन किया और बताया किस प्रकार रूप गोस्वामी के युक्त वैराग्य सिद्धांत के अनुसार कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिक वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त कर रहा है। एक शब्द इस्तेमाल किया है युक्त वैराग्य। सो व्हाट इज युक्त वैराग्य? कह रहे हैं इस किस प्रकार रूप गोस्वामी के युक्त वैराग्य सिद्धांत, इट इज ए प्रिंसिपल सिद्धांत है। जैसे सिद्धांत है कि आसमान में चीजी फेंकी हुई चीज जमीन पर आकर गिरती है, इसी तरीके से एक सिद्धांत है कि युक्त वैराग्य। और युक्त वैराग्य क्या कहलाता है? पहले वैराग्य और फिर युक्त वैराग्य। जब हम वैराग्य की बात करते हैं तो वैराग्य का अर्थ क्या है? कि आप तपस्या के प्लेटफॉर्म पे हैं और आप कुछ चीजों को अस्वीकृत करने या छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब अब आप वैराग्य की स्टेज पे जा रहे हैं। परंतु वैराग्य से काम नहीं चलता है। व्हाट यू नीड इज, क्या आपको चाहिए? युक्त वैराग्य। तो वो युक्त वैराग्य क्या है? युक्त का अर्थ होता है जोड़ना, जुड़ जाना। वैराग्य का मतलब है जिस वैराग्य के द्वारा आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हो वो युक्त वैराग्य कहलाता है। अब किस वैराग्य के द्वारा जोड़ते हो? कौन सा ऐसा वैराग्य है जिसके द्वारा आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हो? अर्थात जो वस्तुएं, जो कार्य भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अवरोधक हैं, नुकसानदेह हैं, उनको छोड़ देना। और जो वस्तुएं, जो कार्य भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में आगे बढ़ने को सहायक हैं, उनको स्वीकार कर लेना भगवान की सेवा के लिए। ये दोनों चीजें मिला के युक्त वैराग्य बनता है। प्रेस्क्रिप्शन भी है और प्रोहिबिशन भी है, परहेज भी है। ये करना है और ये नहीं करना। क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है। क्या करना है? नाम जप करना है। क्या करना है? कथा करनी है, कथा सुननी है, मंदिर आना है, दर्शन करने हैं। क्या करना है? भगवान को भोग लगाना है। क्या नहीं करना है? जो चीजें पहले बताई, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मांस भक्षण, मादक द्रव्य सेवन, द्यूत क्रीड़ा, किसी के प्रति हिंसा, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, ये सारी बातें जो हैं आपको छोड़नी पड़ेंगी। मतलब ये परहेज हैं, ये निषिद्ध कार्य हैं, जो विहित कार्य हैं पहले बताए। तो अर्थात जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलोगे, भगवान की सेवा में प्रयुक्त हो गए, तो जो वस्तुएं आपके पास हैं वो भगवान की सेवा में प्रयुक्त होती हैं तो उनको रखिए, सेवा प्रयुक्त नहीं होती हैं तो उन्हें त्याग दीजिए। कोई इच्छा आप करते हैं, अगर वो इच्छा भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है तो उसको पूर्ण करने का प्रयास करिए। कोई इच्छा आपको भौतिक संसार में सुख आनंद देने के लिए है, एक भौतिक भोग के लिए है, इंद्र तृप्ति के लिए है, तो उसका त्याग कर दीजिए। ये युक्त वैराग्य हो जाएगा कि आप वैराग्य ले रहे हैं, अर्थात भगवान की सेवा के लिए प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, जो उनके सेवा में प्रयुक्त नहीं होती हैं उनको डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो आप जो है युक्त वैराग्य के प्लेटफॉर्म में। और यहां कहते हैं वो प्लेटफॉर्म, वो जो सिद्धांत है किसने दिया है? रूप गोस्वामी ने। पाश्चात्य देशों में लोगों की स्थिति बहुत वैभवपूर्ण है। मेरे शिष्य मुझे ऐसा आवास देते हैं जिसकी कल्पना एक राज्यपाल भी नहीं कर सकता। मुझे स्मरण है कि कुछ समय पहले लखनऊ में मैं एक रात सरकारी मकान में अतिथि था। उस समय विश्वनाथ दास गवर्नर थे, वे मेरे परिचित थे। अतः मुझे उस वैभवपूर्ण मकान का स्मरण है जहां एक रात मैंने विश्राम किया था। किंतु मेरे शिष्य मुझे सब कुछ दे रहे हैं, हम उसे ठुकरा नहीं सकते क्योंकि अमेरिका में जीवन स्तर यही है। आप ये नहीं कह सकते, नहीं मैं इस बढ़िया कक्ष में नहीं सोऊंगा, मैं सड़क पर सोऊंगा, मैं एक सन्यासी हूं, तब मेरा सम्मान कोई नहीं करेगा। अमेरिका में रहन सहन का स्तर इसी प्रकार का है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं आप किसी चीज में आसक्त ना हो, मतलब भौतिक सुख आनंद के लिए किसी चीज में आसक्त ना हो। किंतु यदि कृष्ण की सेवार्थ आपको ऐसी चीजों का सेवन करना पड़े तो आप उसे स्वीकार करें। कंडीशन, सॉरी, टर्म्स एंड कंडीशंस, एक स्टार लग गया छोटा सा, कंडीशंस अप्लाई। क्या अप्लाई हो रही हैं? कि कृष्ण की सेवार्थ, कृष्ण की सेवा के लिए अगर आपको ऐसी चीजों का सेवन करना पड़ता है तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। लोग माया की सेवा में आसक्त हैं, किंतु हम हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहते हैं, यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। किसी ने बीबीटी जो हमारा भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है, इसमें जो बुक्स पब्लिश होती हैं उसका प्लांट देखा है? फोटो देखी है, पिक्चर देखी है, मूवी देखी है? मैंने प्लांट नहीं देखा है, पर मैंने उसका एक क्लिप देखा है, एक क्लिप देखा है। बिल्कुल ये किताब जो है ना, इस पे कवर लग के उसे क्या कहते हैं, वो जो रेलिंग होता है जिसके ऊपर, मतलब
बेल्ट,
बेल्ट बेल्ट के ऊपर जो है किताब यूं आती है, यूं जाती है, कंपाइल हो जाती है इकट्ठी। वो कैसे बन के आ रही है, कैसे मॉडर्नाइज किया हुआ है, वो हाथ से बैठ के सिलाई नहीं हो रही है। आज की तारीख, आज ये जो बुक्स हैं, इनकी हाथ से सिलाई नहीं हो रही है, हाथ से इनकी फेविकॉल नहीं लग रहा है, हाथ से जोड़ी नहीं जा रही है। दिस ऑल इज बींग डन बाई ऑटोमेटिक मशीन्स। वो ऑटोमेटिक मशीन्स जो करोड़ों रुपए की हैं, किस लिए इस्तेमाल हो रही हैं, किस लिए? आज अगर देखें, आई स्टिल रिमेम्बर, आज से 40 साल पहले की बात है, 1972-71 के आसपास की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो क्रिश्चियंस जो है उनके हमें बहुत सारे मैसेज मिला करते थे, बहुत सारे मतलब वो पैम्फलेट बांटा करते थे, पतली सी किताब उनकी किताब होती थी, और कनॉट प्लेस के अंदर उनका एक चर्च है बहुत बड़ा, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता था, बोले आप आइए मिलिए, मतलब बहुत ज्यादा प्रचार चलता था। तो उन दिनों वो कहा करते थे कि हमारे जो क्रिश्चियंस हैं, इनका जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में नंबर वन है, बहुत किताबें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाइबल से छोटे छोटे बुक्स निकाल के जैसे कहानियां बना के कुछ करके इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, बाई पोस्ट फ्री आता था, डाक से फ्री बुक्स आया करती थी विदाउट एनी एक्सपेंडिचर। बहुत किताबें हमारे पास आई इस जमाने में, कॉलेज के जमाने की बात कर रहा हूं। क्रिश्चियंस की गिनती आज भी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा है, सेकेंड नंबर पे मोहम्मदंस आते हैं। अगर हम ओल्ड ट्रेडिशन की बात करें तो जो हिंदूज हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज भी कम है। अब हमने वैष्णव बनाए, ब्राह्मण बनाए, सब कुछ किया। इस सब करने के बाद जो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज मिला, जो हमें सबसे बड़ा फायदा हुआ प्रभुपाद के मूवमेंट का, हरे कृष्ण आंदोलन का, कि आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम नंबर वन हैं, कोई मैच नहीं कर सकता, Nobody can match। वो पीछे छूट गए, कहां गए उनको, मतलब अगर वर्ल्ड के अंदर जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा तो आज इस्कॉन का नाम जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नंबर एक है। तो नंबर एक बनने के लिए कितनी मेहनत हुई है, बीबीटी ने कितना काम किया है, कैसे बुक्स बनी हैं, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अर्थात हमने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको भगवान की सेवा में कैसे यूज किया है, हमने उसको डिस्कार्ड नहीं किया। नहीं नहीं, हम तो जो है भोजपत्र पे लिखेंगे, आज भी किताबें छपेंगी कैसे, भोजपत्र पे मोर के पंख की कलम बना के लिखा जाएगा, उससे किताबें बांटे जाएंगी। नो, वी हैव टू गो एवरी टाउन एंड विलेज, गांव गांव, गली गली, घर घर। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ आने वाला है, कितनी दूर है, चालू हो गया, टारगेट फिक्स होने शुरू हो गए। दिसंबर में मैराथन है, नवंबर में बुक्स आ जाएंगी, और नवंबर में आते ही उसके पहले ही प्लानिंग हो जाती है हम लोगों की कि ये किताबें कहां कहां पहुंचानी है, कौन कौन हमारे फिक्स टारगेट्स हैं, और जो मूविंग टारगेट्स हैं, जो फ्लोटिंग टारगेट हैं, वो ऑन द स्पॉट कि आज वहां चलो, आज वहां चलो, आज वहां चलो, आज वहां चलो। अगर ये प्लानिंग ना हो, ये युक्त वैराग्य है। समय को आप भगवान की सेवा में कैसे यूज कर रहे हैं एडवांस के अंदर, उस समय को अपने लिए व्यर्थ न करके, घूमने फिरने में व्यर्थ न करके, प्लानिंग करके आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं। और यही वजह है, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु बताएंगे, प्रभु जी वर्ल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन में दिल्ली की पोजीशन क्या है, भगवान दिल्ली नंबर वन है। आप गुरु महाराज की ब्लेसिंग ऐसी हैं कि दिल्ली जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर वन है। नंबर वन होना पूरे वर्ल्ड के अंदर आसान कार्य नहीं है, इट्स नॉट ए इजी जॉब, और एक दिन का भी कार्य नहीं है। डिवोटीज है वर्क डे एंड नाइट, और वो जो एक हिम्मत है, वो जो एक जोश है, वो कहां से आया है? इस ग्रंथ को पढ़ने से। दिस इज द बुक विच इज मोटिवेटेड डिवोटीज के बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना, प्रभुपाद ने कैसे करवाया, कैसे इंस्ट्रक्शंस दी, कैसे बीबीटी की स्थापना हुई, और कैसे जो है एक भक्त। अब जनार्दन प्रभु को जानते हैं? कितने लोग जनार्दन प्रभु को जानते हैं? जूनियर है कि सीनियर है? जूनियर है कि सीनियर है? 8 साल पहले मैं एक दिन नेहरू प्लेस गया था कंप्यूटर के लिए कोई सामान लेने के लिए, 10 साल हुए होंगे, तो जनार्दन बाबू जो है वहां पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। सन्यासी बनने वाले हैं, बट ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, ही इज एक्सपर्ट इन दैट। वो उसके अंदर एक्सपर्ट, एक्सपर्टाइज है उनके पास, और एक्सपर्टाइज कहां से आई है? इस ग्रंथ के अध्ययन से, इसके पढ़ने से, इसे ज्ञान प्राप्त करके, इसे मोटिवेट हो गए कि कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे जो है उन्होंने इस एज में जाके, इस पोजीशन में जाके भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन को अपना टारगेट बनाया हुआ था। अब यहां कह रहे हैं लोग माया की सेवा में आ सकते हैं, हम हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहते हैं, यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसलिए हम वायुयान का इस्तेमाल करते हैं, डिक्टाफोन का इस्तेमाल करते हैं, टेलीटाइप मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और अपना फर्श साफ करने के लिए भी हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये जीवन प्रणाली की बात है, हमारे हर केंद्र में कई नई कारें, हर केंद्र में कितनी गाड़ियां प्रभु जी आज, कितना नंबर है? 8 हैं। आई स्टिल रिमेम्बर जब सन 2000-2001 में महाराज ने मुझे पंजाबी बाग की जिम्मेदारी सौंपी, तो हमारे पास 2 ऑटो होते थे और एक पुरानी वैन हुआ करती थी। अब सब नहीं है, और वैन कोई नहीं होगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, स्कॉर्पियो होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बिकॉज वी नीड इट। हमको सामान भर के ले जाना है, हमको डिवोटीज को भर के ले जाना है, हमको डिस्टेंसेस कवर करने हैं। तो आज देखिएगा कि उस भगवान की सेवा के लिए हमने कितना कुछ एक्सेप्ट किया है, कितना कुछ बनाया है। यहां तो अभी 8 हैं, बड़े मंदिर में जाएंगे तो शायद 80 निकलेंगे, वहां लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, अंदर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। आइडिया इज कि हर चीज को भगवान की सेवा में कैसे यूटिलाइज करना है, ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये तरीका, ये सिस्टम हमें प्रभुपाद ने सिखाया, और उसकी नॉलेज हमें मिलती है इस ग्रंथ से। दैट इज वाई आई से जो सौभाग्यशाली हैं उन्होंने ग्रंथ पढ़ा है, जो दुर्भाग्यशाली हैं उन्होंने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा। अगर आप इस ग्रंथ को पढ़ते हो तो आप वाकई सौभाग्यशाली हो, आंसू आएंगे आपके, यू विल बी इन टीयर्स। आप जो है आंसू बहाएंगे, क्योंकि भगवान ने जितना स्ट्रगल किया है, जितनी सेवा करी है, जितनी मेहनत करी है, जब वो आपके आग निगाहों से गुजरेगी, आपके मन से होकर दिमाग तक जाएगी, तो आपको लगेगा यस दिस इज समथिंग विच इज अनबिलीवेबल। इसका विश्वास करना बड़ा कठिन है। यहां कहते हैं कि इनके बिना काम नहीं चल सकता। यूरोप और अमेरिका में सामान्यतः कोई भद्र पूरी सड़क में पैदल नहीं चलता, वहां का जीवन पद्धति यही है, इसलिए हमें सब स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन हमें उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। हमारी आसक्ति केवल कृष्ण में होनी चाहिए, और कृष्ण की सेवार्थ हम कोई भी वस्तु स्वीकार करते हैं, यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। प्रभुपाद ने अपने व्याख्यान की समाप्ति जमीन की मांग के साथ की, और अपने संघ के लिए वृंदावन में एक मंदिर की स्थापना करना चाहते थे। बाद में मोटर पार्ट्स के विक्रेता एक सज्जन श्रीमान एस जो ने जो वृंदावन में रहते थे एक भूमिखंड प्रभुपाद को देने की सहमति दी, जिसे उनके परिवार ने किसी उपयुक्त धार्मिक उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखा था। प्रभुपाद मुस्कुराए, वे वृंदावन में अभी पहुंचे ही थे कि कृष्ण इस्कान केंद्र की स्थापना के लिए उन्हें स्वअवसर प्रदान करने लगे थे। प्रभुपाद ने श्रीमान एस को भगवान कृष्ण की सेवा में जमीन देने के लिए धन्यवाद किया। उनके भूमि अनुदान से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संवर्धन होगा और दाता श्रीमान एस लाभान्वित होंगे। प्रभुपाद जानते थे कि वृंदावन के प्रमुख नागरिकों की ओर से उनका जो औपचारिक स्वागत सत्कार हो रहा था उसके पीछे गहरे दुराव, यहां तक कि संदेह की भावना भी छिपी थी। विशेषकर वृंदावन के बड़े बड़े मंदिरों के मालिक जाति गोस्वामियों में श्री प्रभुपाद के विदेशी शिष्यों को एक प्रकार से भक्त स्वीकार करते हुए भी वृंदावन के बहुत से निवासी इन विदेशी वैष्णवों को ब्राह्मण संन्यासी या पुजारी के रूप में स्वीकार करने के अनिच्छुक थे। ये भ्रामक धारणा की पारंपरिक हिंदू विचारधारा के कारण थी कि केवल ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न लोग ही ब्राह्मण हो सकते हैं। ये पुराना ट्रेडिशन की बात हो रही है। किंतु प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चरण चिन्हों पर चल रहे थे, जो मुक्त भाव से किसी को भी स्वीकार कर लेते थे, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो और वह पुरुष हो या स्त्री। जब 1932 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने 1000 से अधिक अनुयायियों को लेकर वृंदावन की तीर्थयात्रा पर आए थे, तब कुछ गर्वांध जातीय ब्राह्मणों ने इन तीर्थयात्रियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया था और उन पर पत्थर फेंककर उन्हें परेशान किया गया था। दुकानदारों ने उनका बहिष्कार किया था। उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहां से ब्राह्मणों से मिले थे और शास्त्रों के आधार पर सिद्ध करके उन्हें दिखाया था कि आत्मा दिव्य होने के कारण उपाधियों से मुक्त है और जो कोई वैष्णव हो जाता है वह स्वयं में ब्राह्मण होने की योग्यता अर्जित कर लेता है, किंतु विरोध भावना बनी रही थी। एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां कि दुकानदारों ने भी उनका बहिष्कार किया था। आज आप वृंदावन की किसी दुकान में चले जाओ, प्रभुपाद की फोटो मिलेंगे, वगैरह इनकी फोटो के बिना उसकी दुकान नहीं चल सकते। आज वृंदावन वासी जो हैं शॉपकीपर स्पष्ट कहते हैं कि अगर आज हमारा उत्थान हुआ है तो केवल इस्कॉन की वजह से हुआ है और किसी वजह से नहीं हुआ। आप किसी भी अच्छे शॉपकीपर से बात करके देख लीजिएगा। लोई बाजार में चले जाइए, बनखंडी महादेव में चले जाइए, मंदिर के सामने। आई स्टिल रिमेम्बर 1985 में जब मैं पहली बार वृंदावन गया था तो हमारे फ्रंट जो डोर है जहां से गेट से एंट्री करते हैं वहां से एंट्री नहीं थी, बन रहा था अभी। जो प्रभुपाद का एक्सपीरियंस है जहां पे उनका वो बुक स्टॉल्स वगैरह नीचे लगते हैं, स्वीट स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, वो बन रहा था। प्रभुपाद का जो आल्टर है वो भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, सीढ़ियां वीढ़ियां सब तैयार हो रही थी, फ्रंट की आर्चिस बन रही थी, तो रास्ता साइड से होता था। और मंदिर के सामने सिर्फ एक लकड़ी का खोखा था जिसके अंदर चाय की दुकान थी। There was nothing there। आज वृंदावन के अंदर पूरी रोड दुकानों से भरी हुई है, गेस्ट हाउसेस अनगिनत हैं, बड़े बड़े गेस्ट हाउस बन गए हैं। हर गेस्ट हाउस बेसिकली क्या है, कहने को तो गेस्ट हाउस है, धर्मशाला है, पर है क्या है, मिनी होटल्स। पे नहीं पे करिए और रहिए, किसी का किराया 500 है, किसी का 600 है, किसी का 1000 है, किसी का 700 है, तो पे एंड स्टे। वो सारा का सारा जो दुकानदारों ने बहिष्कार किया था, आज वही दुकानदार जो है प्रभुपाद की फोटो के बिना, उनकी लेमिनेशन के बिना अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद की फोटो जो है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, उनकी दुकान अट्रैक्ट नहीं करती, शॉप अट्रैक्ट नहीं करती। अच्छा, वो प्रभुपाद देर, अंग्रेज देखते हैं ना, कई बार हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, अंग्रेज देखता हो प्रभुपाद देर और दुकान में घुस जाता, वो उनके लिए दुकान की अट्रैक्शन नहीं है। दुकानें तो सब पे माल बिक रहा है, अट्रैक्शन किसकी है, प्रभुपाद की प्रेजेंस की। जो प्रभुपाद वहां पर उपस्थित हैं वो प्रेजेंस जो है, उन्होंने वृंदावन वासियों का उत्थान किया है, चाहे हम कुछ भी कहें। परंतु उस जमाने में दुकानदारों ने बहिष्कार किया था और आज वो आमंत्रित करते हैं, आज उनको जो है बिठा रखा है, प्रॉपर स्थान दे रखा है, जगह दे रखी है कि आपके बिना हमारा यहां पर चलना दुश्वार है। शील भक्ति सिद्धांत का अनुगमन करते हुए प्रभुपाद ने भी इस विचारधारा से इनकार किया कि गोस्वामी की उपाधि उत्तराधिकार से प्राप्त की जा सकती है। गोस्वामी का तात्पर्य उससे है जो अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर ले, और यह उपाधि किसी के द्वारा केवल इसलिए नहीं धारण की जा सकती कि उसका जन्म तथा कथित गोस्वामियों के परिवार में ही हुआ है। वृंदावन के मूल गोस्वामी छह थे, श्री सनातन, श्री रूप, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सभी सन्यासी थे और अतः संतान विहीन थे। लगभग 500 वर्ष पूर्व इन गोस्वामियों ने वृंदावन में कृष्ण की लीला स्थलों की खोज की थी और वृंदावन में पहले विशाल मंदिरों का निर्माण कराया था। अपने मंदिरों में विग्रह की पूजा अर्चना के लिए उन्होंने विवाहित शिष्य नियुक्त किए थे और अब उन मूल पुजारियों के वंशज वृंदावन के मंदिरों के गोस्वामियों के रूप में एकाधिकार का दावा कर रहे थे। रूपा ने इस मामले में अपने गुरु महाराज के संघर्ष के संबंध में लेटर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा था। भगवान चैतन्य के महान पार्षद महाप्रभु नित्यानंद के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों के एक वर्ग ने नित्यानंद के वंशज होने का दावा किया और वे अपने आप को गोस्वामी जाति के कहने लगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि भक्ति विधान और भक्ति के प्रचार का अधिकार केवल उनके विशेष वर्ग को है जो नित्यानंद वंश कहलाता था। इस तरह उन्होंने अपने छद्म अधिकार का उपयोग उस समय तक किया जब तक गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के प्रभावशाली आचार्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनकी धारणा को पूर्णतया ध्वस्त नहीं कर दिया। कुछ समय तक घोर संघर्ष चलता रहा लेकिन उनकी परिणति सफलता में हुई और अब यह ठीक ही स्थापित हो गया है कि भक्ति पर किसी विशेष का एकाधिकार नहीं। अतः प्रभुपाद ने जाति गोस्वामियों के जन्म अधिकार की विचारधारा का विरोध किया और जाति गोस्वामियों को प्रभुपाद के आंदोलन से डर था क्योंकि यह उनके जन्मजात सामाजिक प्रभुत्व को चुनौती देता था। तब भी पाश्चात्य जगत में वृंदावन की महिमा का प्रचार करने के बाद उनकी विजयपूर्ण वापसी के इस अवसर पर किसी ने भी उनके मंदिर स्थापना के प्रयत्नों का विरोध नहीं किया। जो असहमत थे वे मौन साध गए और प्रशंसा के फूल बरसाने लगे। यह स्थान रमन रेती में था। प्रभुपाद ने देखा कि यह जागीर वृंदावन के बाहर व्यस्त छटिकरा रोड पर स्थित है जो वृंदावन को जाने वाली मुख्य सड़क है और आगरा और ताजमहल का मुख्य यातायात मार्ग है। यह भूमि वृंदावन परिक्रमा पथ के भी निकट है जहां से होकर प्रतिवर्ष लाखों यात्री वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और इसके मंदिरों तथा पवित्र स्थानों का दर्शन करते हैं। रमन रेती अर्थात रमणीक बालू जो पराया जंगल थी, इसमें कुछ आश्रम थे, परित्यक्त खेत थे। ये कृष्ण के प्रिय स्थल के रूप में विख्यात है जहां पर 5000 वर्ष पूर्व अपने भाई बलराम और ग्वालों के साथ खेला करते थे। रमन रेती ईश्वर के दिव्य प्रेम से ओतप्रोत थी जो वृंदावन का विशिष्ट वातावरण है। यद्यपि अनेक नगर अधिकारियों ने यदा कदा चर्चा की थी कि नगर भूमि का अनुदान कर सकता है, किंतु प्रभुपाद ने श्री एस के प्रस्ताव को अधिक गंभीरतापूर्वक लिया और श्रीमान एस ने बताया कि यद्यपि बहुत से अन्य साधु उस भूमि की मांग कर रहे थे किंतु वे और उनकी पत्नी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे थे। वे ऐसे समुदाय को भूमि देना चाहते थे जो यथाशीघ्र उस पर राधा कृष्ण का मंदिर बनवा सके। जब प्रभुपाद ने विश्वास दिलाया वे ऐसा करेंगे तो श्रीमान एस ने वचन दिया कि भूमि अब प्रभुपाद की हो गई। प्रभुपाद ने ऐसे वादे पहले भी सुने थे जो प्रायः झूठे साबित हुए थे, किंतु इस प्रस्ताव को गंभीर समझकर उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को वृंदावन में रहने के लिए नियुक्त कर दिया ताकि वे श्रीमान एस के साथ इकरारनामा तैयार करा सकें। इस बीच प्रभुपाद अपने शिष्यों को वृंदावन के बहुत से महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा पर ले गए। बरसाना, श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान, गोकुल, कृष्ण की प्रथम लीलाओं का स्थल, राधा कुंड, गोवर्धन और वृंदावन के बड़े मंदिर। गोवर्धन पर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा कि वे गोवर्धन पर्वत पर पैर ना रखें या गोवर्धन पर्वत से कोई पत्थर ना उठाएं क्योंकि गोवर्धन पर्वत कृष्ण से अभिन्न है। गोवर्धन पर्वत पर प्रभुपाद अपने शिष्यों को एक छोटे से मंदिर में ले गए। वहां उन्होंने उन्हें श्री कृष्ण का चरण चिन्ह दिखाया। चरण चिन्ह बहुत बड़ा था। भक्तों को आश्चर्य हुआ, यदि कृष्ण के चरण इतने बड़े थे तो वे अवश्य 8 फुट के रहे होंगे। प्रभुपाद ने कहा, हाँ उस समय वे और भी बड़े थे। गोवर्धन के निकट बिंदु सरोवर में जो राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का स्मारक स्वरूप जलाशय है, भक्तों ने तैरते हुए स्नान किया जबकि प्रभुपाद ने निकट के मैदान में बाल्टियों द्वारा जल से नहाया। बाद में जब प्रभुपाद प्रसाद ग्रहण करने लगे तो भक्त कुत्तों को पत्थर मारकर चिल्लाकर भगाने में लग गए, लेकिन प्रभुपाद ने उन्हें मना किया, छोड़ो उन्हें। वे अपनी प्लेट से कुत्तों को प्रसाद फेंकने लगे। राधा रानी के जन्म स्थान बरसाना में भक्तगण प्रभुपाद को एक पालकी में बैठाकर ढालू सीढ़ियां पार करके मंदिर तक ले गए। पहाड़ी के सिरे से उन्होंने दूर स्थित एक दूसरी पहाड़ी की ओर देखा और इशारा करते उन्होंने कहा, देखो वहां देखो, कृष्ण उस पहाड़ी के नीचे आया करते थे और राधा इस पहाड़ी से नीचे जाया करती थी। इन दोनों के ये दोनों बीच में मिलते थे और वहां घना जंगल था। अतएव ये एक विशेष स्थल है क्योंकि राधा और कृष्ण का मिलन स्थल है। प्रत्येक पवित्र स्थान में श्री प्रभुपाद बैठ जाते थे, कीर्तन कराते थे और विग्रह के सम्मुख जाकर प्रणाम किया करते थे। तब वे उस स्थान से संबंधित कृष्ण की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करते थे। दीन यात्री कहते हैं, तीर्थ स्थानों में भारतीय पैसे मांगने के लिए प्रभुपाद का हमेशा पीछा करते रहते। वे सोचते थे उनके शिष्य अमेरिकी होने के कारण धनी हैं, इसलिए वे पैसे मांगते थे। प्रभुपाद कुछ दे देते, लेकिन वे इतने अधिक थे कि जो ही प्रभुपाद एक को कुछ देते त्यों ही आधा दर्जन अन्य लोग उन्हें और घेर लेते और आगे बढ़ने से रोक देते। कुछ मंदिरों में उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। तत्पश्चात प्रभुपाद अपनी टोली को यमुना के किनारे उस स्थान पर ले गए जहां कृष्ण ने अपनी माता को मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया था। जल का स्पर्श करते हुए प्रभुपाद ने कहा, मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए बहुत अधिक ठंडा है, लेकिन तुम लोग स्नान करो, मैं अपने सर पर कुछ बूंदें डाल लूंगा। उन्हें स्त्रियों को एक अन्य स्थान पर तैरने के लिए निर्देशित किया जहां भारतीय महिलाएं नहाती थीं और पुरुष पानी में कूद पड़े और तैरने लगे। वे जल क्रीड़ा करने लगे। किनारे पर खड़े प्रभुपाद उन्हें देखते रहे। एकाएक प्रभुपाद ने गमछा पहन लिया, नदी के तीर तक गए, अपने सिर पर कुछ जल छिड़का, तब घुटने तक पानी में चले गए। यमुना के जल में डुबकी लगाकर वे भक्तों के साथ एक दूसरे पर जल छिड़कते हुए नहाने लगे। यह देखकर भक्त प्रसन्नता से विहल हो गए। आज इतना ही। इसके बाद का जो टॉपिक है बहुत लंबा है। दिस विल टेक अबाउट अनदर वन आवर। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की।